discuss local cooking. Ayan tambula,
ano kaya tambula?
Ragdande sagrajotita, tartar samas marasobha, atmanam navidansya, visrasta vasa kavara.
विसृज मात्रवायाताम् व्रजन मार्गे मणिपथै नानोपायन ताम्बूल रक्गन्धै साग्रजोच्यतः आत्मानं नाविदंस्या मिश्रस्वासकर वलयालेख्य मूर्तय
मार्गे समुदायों के द्वारा उपायन भेंट की सामग्रियाँ तांबूल तांबूल श्राक रत्नों की मालाएं गंधई और अगुरु आदि सुगंधित द्रवों द्वारा साग्रज अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अर्चित सम्मानित होते हैं। कल प्रसंग चल रहा था पूजा को भगवान ने परम सुंदरी बनाया और वो आग्रह कर रहे थे अपने घर चलने के लिए। तब भगवान उस समय नहीं गए बाड़ा माधव्या बाड़ा मधुर वचन बोल करके भगवान उसको विदा किए। ऋषि के साथ छोड़ उसे छोड़े वह दुपट्टा पकड़ ली थी भगवान का तो भगवान अपना पीताम्बर दुर्गा तक छुड़वाए बुढ़ाए और अपने समाज के साथ चलने लगे। छुड़ाने के लिए उन्होंने मधुर वचन का प्रयोग किया, माधुरी वाणी जिसमें मधु हो, मधु से ही मधु बनता है। बहुत मधु वचन बोले, मधु वचन क्या बोले, मैं तुम्हारे शुद्ध भाव से, उत्निष्ठ भाव से तुम्हारे वश में हूँ, और सच पूछो तो मैं ब्रज से यहाँ आया, मथुरा आया केवल तुम्हारे लिए। भगवान इस प्रकार की मधुर वाणी बोल रहे थे। भगवान ने अभी कह दी, बाप की कसम मैं तुम्हारे भी आया, मेरे आने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। इस प्रकार मधुर वचन बोले, उसको आश्वासन दिया, छुड़ा करके विश्रम दिया, छुड़ा करके पुनः राजमार्ग पर चलने लगे। तो मथुरा का बाजार आप लोगों ने देखा होगा, जमुना के किनारे सड़क जो गई है मेन सड़क द्वारका भीष्मार, उस तरफ भगवान जा रहे थे तो उमार गुजर रहा था, मार्ग राजमार्ग के नजदीक में तो बाजार है, वो बड़ी पथ है, बनियों का पथ। तो अब वैसे लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं भगवान का, इसका वर्णन करते हैं। नाना उपायन भेंट की सामग्री में लिए, नाना उपायन मतलब है बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र जो फूल आदि भेंट कर रहे थे, और रत्नों की माला, सोने की मालाएं, हीरा की माला, डायमंड की माला अर्पित कर रहे थे, और बहुत स्वादिष्ट फल अर्पित कर रहे थे, भगवान को ला करके दे रहे थे श्री कृष्ण बलराम को। और कुछ उपायन का नाम यहाँ रख रहे हैं सुदेव गोस्वामी, तांबूल भगवान के लिए और श्री बलराम जी के लिए तांबूल अर्पित कर रहे थे। काम तांबूल और श्रव श्रव का रत्न माला, सोने की मालाएं, हीरे की मालाएं अर्पित कर रहे थे दोनों भाइयों को और गोपों को भी। श्री बलराम जी के साथ श्याम सुंदर का बहुत आदर हुआ, सत्कार हुआ वैश्य समाज के द्वारा। मैं जितने भी गर्गे या मित्तल या और सब थे, गोयल वंशल, इन सबके द्वारा भगवान का बहुत बड़ा सम्मान हुआ। ये सब व्यापारी थे, इन वस्तुओं को विक्रेता ये ला ला करके भगवान को और श्री बलराम जी को देने लगे। साग्रज अर्चिता भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई के साथ बहुत अर्चित हुए, सम्मानित। अब वैश्य परिवार की स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं। वैसे तो मथुरा के सभी लोग भगवान कृष्ण पर आसक्त थे और सब प्रेम कर रहे थे, परंतु स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, उनका अधिक भाव था भगवान के प्रति, तो उनका वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। तत्पर थना स्मरत शोभा आत्मान नागजन स्त्रिय विश्वास वास कबर बलया लेख्य मूर्त। तब दर्शना का अर्थ है तस्य दर्शनेन, श्री कृष्ण दर्शनेन स्त्रिय आत्मान न अभिजन। श्री श्याम सुंदर को देख कर स्त्रियाँ अपने आप को भूल जाती थी, स्मरण नहीं रहते, स्मर शब्द ध्यान देने योग्य है। स्मर शब्द का अर्थ होता है काम, और यह काम प्रेम विलास रूप है, प्राकृत जगत का काम नहीं है। सांसारिक कामदेव का आदेश नहीं है, प्रेम विलास रूप काम है। भगवान कृष्ण के प्रति काम उत्पन्न हो यह बहुत दिव्य है। श्री कृष्ण को देख कर तब दर्शना स्मरत शोभा, प्रेम विलास उत्पन्न हुआ स्त्रियों में, और प्रेम विलास से शोभ हुआ। शोभ का तो धैर्य क्षय, धैर्य नहीं रहा, अर्थात मोह उत्पन्न हो गया। वे जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई, बैठी रह गई, आत्मान न अभिजन, ये अपने आप को नहीं जान पाए, सुधी नहीं रह गई। श्री कृष्ण को देखते हैं तो अर्थ है कि आत्मान देह देही की सुधी नहीं रही, अपनी शुद्धि नहीं रहे उनके। हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं इस समय, इसकी शुद्धि नहीं रही। देह की शुद्धि नहीं रही और आत्मा की शुद्धि भी नहीं रही। भूल गए अपने आप को, भगवान इतने सुंदर हैं, उनको देखते ही स्मर दशाएं उत्पन्न हो गए। प्रेम विलास रूप काम की दस दशा का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने किया है। स्मृति दस दशा होती है। प्रथम है चक्षुराग, चक्षुराग प्रथम है। जब देखते हैं कृष्ण को तो आंखें बिल्कुल असक्त हो जाती है, देखने लगती हैं, एक तक देखती हैं, तो इसको चक्षुराग कहते हैं। यदि श्री कृष्ण भी देख लें तो उनकी आँख और मथुरंगना की आँख, गोपी की आँख या मथुरा की नागरी की आँख मिल जाती है, तो इसको चक्षुराग कहा गया है। और पुनः आँख उनके मुख कमल से हट नहीं सकते, देखते ही बनता है, देखते रहते। इसके बाद चित्ता संग, चित्त का असंग, चित्त की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प कि मैं कैसे कृष्ण से मिलूंगी, उनका आलिंगन करूंगी, उनसे बातें करूंगी, इसको कहते हैं संकल्प। प्रेम विलास की तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था है निद्रा छेद, नींद नहीं आती है। श्री कृष्ण से मिलने की लालसा इतनी बलवती होती है कि नींद हराम हो जाती है, नींद नहीं आती है। और तनुता पांचवी दशा है, तनुता शरीर दुबला हो जाता है, शीर्ण हो जाता। और इसके बाद विषय निवृत्ति, छठी दशा है, किसी विषय में काम मन नहीं लगता है, आँख से न कुछ देखना अच्छा लगता है, न खाना पीना या काम करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसको विषय निवृत्ति कहा गया है। और सातवीं दशा है कपाहानि, लज्जा नष्ट हो जाती है। आठवीं दशा है मूर्छा, आठवीं दशा है उन्माद, नौवीं दशा है मूर्छा और दसवीं दशा है मृत्यु मरण, बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाए। तो प्रेम विलासनी स्त्रियों का वर्णन, प्रेम दशा का वर्णन नुमा दशा का नहीं किया जाता, क्योंकि अमंगल स्वरूप है। मूर्छा और मृत्यु हुआ इसका वर्णन नहीं किया जाता। यहाँ पर सातवीं स्थिति का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं, शरीर की शुद्धि नहीं रही, देह की और देही की शुद्धि नहीं रही, देहं देहिनां, आत्मविजय, कुछ भी ध्यान नहीं रहा कि हम कौन हैं, कहाँ खड़ी हैं, क्या कर रही हैं, इसका ध्यान देते हैं। इस चीज को ऐसे देख रहे थे कि कुछ सुधी नहीं था, और उस समय जो विश्वास राष्ट्र खबर वस्त्र शिथिल हो गए हैं, आभूषण जी रहे हैं और केस पास बिखर गया है, ये नहीं जान पा। समाज भरा है, परिवार है, लेकिन दिन के सुधी भूल गए, और इस कारण से शरीर का श्रृंगार बिगड़ रहा है, घूंघट हट गया है, बाल बिखर गया है, कंचुकी ढीली पड़ गई है, और बल है चूड़ियाँ हाथ से खिसक गई हैं, तो ध्यान नहीं। चूड़ी क्यों हाथ से निकल गई, सोने की चूड़ियाँ हाथ से निकल गई, स्वस्थ हो गई, इसका अर्थ है तत्काल कृष्ण को देखते हुए प्रेम आकांक्षा से इतनी दुर्बल हो गई, इतनी क्षीण हो गई कि हाथ पतला हो गया और चूड़ी गिर गई, बलय गिर गया। केस पास बिखर गए, कुछ भी नहीं रहे, शरीर में अंगड़ाई हो रही थी और लौट रहे थे जमीन पर। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्त्रियों की दशा ऐसी है, उनको देखने पर ऐसा लगता है चित्र बनाई हुई स्त्री हैं, जैसे दीवार पर चित्र बनाते हैं, उसमें कोई हलचल नहीं, कोई हाथ का संचालन नहीं, पैर का नहीं, पलक नहीं गिरता है, चित्र में बनी हुई स्त्री जैसे होती है वैसे निष्पंद रह गई स्त्री। बहुत काल से सुने थी कि श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, लेकिन देखने में और सुनने में बहुत अंतर होता है। वो जही देख तही प्रेम की दशाएँ उत्पन्न हो रही, इसमें कुछ कालक्रम लगता है, कुछ समय लगता है, एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी अवस्था होती जाती है, लेकिन श्री कृष्ण का ऐसा प्रभाव है कि उनके दर्शन होते ही एकाएक सभी दशा उत्पन्न हो गई। चक्षुराव होते ही चित्त का असंग और संकल्प कविता क्षीण हो गया शरीर तथा विषय की निवृत्ति और लज्जा का नाश सब एक समय ही हो गया। इस संसार में काम की दशाएँ कोई एक साथ उत्तर नहीं होता, एक दशा होते कुछ काल क्रम लगता है, कुछ समय लगता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, लेकिन स्मृति से इतने मधुर हैं, इतने सुंदर हैं कि जब उनका दृष्टि पड़ना, उनको देखना और प्रेम की दस दशाएँ उत्पन्न हो जाती है। अतः इन स्त्रियों भगवान कह रहा है कि तत्काल भूल गए कि हम कौन हैं। अब घर जाने की सुधि नहीं रहेगी, जैसे खड़ी थी वैसे खड़ी रह गई, बैठी थी बैठी रह गई, देह की सुधि नहीं रही, इसलिए देह के श्रृंगार का ध्यान नहीं रहा। लज्जा नहीं रही, आत्मान न अविदन स्त्री है, इसलिए अपने आप को नहीं जानता। लेख्य मूर्ख जैसे चित्र में गुलाल का पिछ देने में मूर्ति बनती है, तो चित्र में स्त्री बोलती नहीं है और सुनती नहीं है, आँख का संचालन बंद रहता है, आँखें खुली हैं तो खुली ही रहेंगी, तो चित्र में आँखें बंद तो नहीं होंगी, यदि आँखें बंद बना दिया गया है तो बंद ही रहेंगे, खुलेंगे नहीं। इस तरह कृष्ण का ये प्रभाव जहाँ जा रहे थे वहाँ के स्त्रियों की ये दशा हो रही है। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि ब्रज में श्री गोपी जन की क्या दशा होती है। गाय चढ़ाने जाते थे वृंदावन और चढ़ा कर लौटते थे, उस समय गोपियों को दर्शन होता था, तो उनकी क्या दशा होती है, दर्शन होने पर और नहीं दर्शन होने पर। कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, इसकी कल्पना इस प्राकृतिक जगत में नहीं की जा सकती। जिनको देखने पर वस्त्र शिथिल हो जाता है, श्रृंगार शिथिल हो जाता है और नाच के बलय नाच की चूड़ियाँ गिर पड़ती हैं, ये श्री कृष्ण समस्त जीवों के परम प्रेमास्पद है। उनके इस सौंदर्य के साथ सबका संबंध है, सभी उसका आस्वादन कर सकते हैं, परंतु इस संसार में ये जल्दी आते नहीं हैं, आँखों के सामने प्रकट नहीं होते हैं, अतः सबसे बड़ा साधन है इनके बारे में सुनना, ये कितने सुंदर हैं, क्या क्या लीला करते हैं, इसको सुनना चाहिए। और सुनते सुनते मन आसक्त हो जाता है। मथुरा की स्त्रियाँ धन्य हैं, बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से श्री कृष्ण के विषय में सुनती आ रही थी, लेकिन आज देखने को मिला और देखने पर एक प्रेम की दशाएँ उत्पन्न हो गई। तो सुनना ही मुख्य है। श्री कृष्ण के विषय में सुनना ये सामान्य श्रवण नहीं है, ये जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। स्मरक क्षोभा प्रेम उत्पन्न हुआ स्त्रियों में, और प्रेम से क्षोभ हुआ, क्षोभ का से भैर्य नाश, उनका भैर्य चला गया, मोह उत्पन्न हुआ। और इस कारण से विश्वास्त्र वास कवर भगवान उनके वास और उनके वस्त्र शिथिल हो रहा है, और कवर किस पास और बल है कम कर लेख मूर्ति, ऐसा लगता था जैसे चित्र बनाया गया है। उसके बाद श्री भगवान पूर्ववासियों से, मथुरा नगर में रहने वाले लोगों से पूछने लगे, कहते थे आप सुने इधर आइए 1 मिनट या 1 सेकेंड आप आइए तो सुनिए, वो यज्ञशाला कहाँ है, धनुष का स्थान कहाँ है। कंस के पास एक धनुष था, शिव जी का दिया हुआ, भूतेश्वर का दिया हुआ था। मथुरा में भगवान शिव रहते हैं, वहाँ के द्वारपाल के रूप में, उनका नाम भूतेश्वर है। भूत माने जीव, जीवों के ईश्वर। या भूत माने घोष्ट, घोष्ट के ईश्वर। तो भगवान भूतेश्वर नाथ ने कंस को धनुष दिया था और कहा था कि इस धनुष की रक्षा करना, जब तक इस धनुष की रक्षा होगी और इसकी जब तक पूजा चलती रहेगी तब तक तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता। एक प्रकार से भगवान शिव ने संकेत कर दिया था कि इस धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति तुम्हारी जान मारेगा, तुम्हारा वध करेगा, इसकी रक्षा करना। उस समय से वह धनुष बहुत सुरक्षित था, स्पेशल फौज सेना लगाई गई थी इसकी रक्षा करने के लिए। रक्षा कर रहे थे, उसकी पूजा हो रही थी। पूजा करने के लिए उसके लिए मंदिर बनाया गया था, धनुष की पूजा करने के लिए, वही इसके देव था। और कंस को जब श्री नारद जी ने बताया कि तुमको मारने वाले कृष्ण और बलराम हैं, यहाँ से जन्म लिए और वसुदेव चोरी से भेज दिया उनको नंद बाबा के यहाँ, जो तुम्हारे आदमियों को मारे हैं, तुम जिनको भेजे उन सबको मारे हैं और उन्हीं के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है। तो यह सुनते ही कंस वसुदेव जी को मारना चाहा, लेकिन नारद जी ने कहा कि वसुदेव को मारने से तुमको क्या फायदा होगा, वसुदेव के हाथ से मृत्यु है कि वसुदेव के बेटा के हाथ से मृत्यु है। इसने कहा नहीं, बेटा के हाथ से तो अच्छा है कि उन दोनों वसुदेव पुत्र